आइए बहुत ही डूबते हुए दिल के साथ और अल्लाह पे नज़रें लगाते हुए इस खूबसूरत से सफ़र का आगाज़ करते हैं जिसको दौरे कुरान कहते हैं। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2024 2024 अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से आज इसका डे वन है। इससे पहले हमने अल्लाह की तौफीक से 4 दिन का जादुल खैर किया जिसमें हमने देखा कि हिदायत के लिए मांगी हुई दुआ सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम उसका मतलब क्या है। आप में से भी जो साथी इस वक्त इस दौरे कुरान से फ़ायदा उठाने की नीयत रखते हैं तो वो ज़रूर उससे फ़ायदा उठाएं, आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद वेलकम रमज़ान के बाद आज हमारा दौरे कुरान 2024 का पहला दिन है। आइए ज़रा हल्का सा तारुफ दे दूं इस साल दौरे कुरान में आप क्या सुनने वाले हैं और अल्लाह मुझसे क्या कहलवाएगा। तो हर साल की तरह कुरान तो वही है, एक लफ्ज़ नहीं बदलूंगी और दुआ कीजिएगा कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। हम कोई हर साल कोई नया ड्रामा या फिल्म या स्टोरी सुनने सुनाने नहीं आते, ये बात लिख लीजिएगा। कुरान का एक एक लफ्ज़ महफूज है और ये अपनी जगह इतना पावरफुल है, इतनी खूबसूरती के साथ अल्लाह ने अपने इस कलाम को पेश किया है कि इसके अंदर कोई शक नहीं कर सकता। ज़रूरत इस बात की है कि इसको पढ़ते वक्त हम अपने हालात पे नज़र रखें। आपकी मेरी ज़िंदगी में कुरान पाक का जो मुकाम है ना, वो हमारे हालात और हमारी सोचों और हमारे इर्द गिर्द की वजह से हर दौर में मुख्तलिफ होता है। कुरान पाक की जहाँ बेहिसाब खूबियाँ ना, उसमें एक खूबी का आप लोग भी ज़रूर इतराफ़ करेंगे। अगर आप आज फर्स्ट टाइम सुन रही हैं सिस्टर्स, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप कहेंगी कि ये किताब मैं पढ़ती हूँ, इससे पहले ये मुझे पढ़ लेती है। आप में से जिसने 2023 यानी 23 का दौरे कुरान सुना, 24 22 1, और कुछ लोग तो गवाही देते हैं, अभी किसी ने बताया कि मैंने आपके 18 दौरे कुरान सुने हैं, 18 साल से मैं सुन रही हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपको हर साल कुरान नया क्यों लगता है, इसलिए कि आपकी उम्र में 1 साल का इजाफा हो चुका होता है। हो सकता है किसी सुनने वाले के स्टेटस में फ़र्क हो चुका हो, यानी पहले वो अनमैरिड बच्ची थी, अब मैरिड हो गई, पहले माँ नहीं थी, अब माँ बन गई, पहले माँ बाप की छत सर पे थी, अब नहीं रही। तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात के साथ ये किताब बदलती रहती है। किसी ने कहा कि ये किताब वक्त के साथ बड़ी होती है। बच्चा इसको सुने तो उसको गुड नाइट स्टोरीज लगती हैं, ज़रा सा बड़ा बंदा सुने तो उसको ये फिक्शन और सूरत यूसुफ वगैरह को जहन में रखिए, ज़रा सा और बड़ा सुने तो कैरियर बिल्डिंग, और फिर बुढ़ापे में तो तकासुर और तफाखुर की बातें हैं। तो इंशाल्लाह इस किताब को मैं एक लफ्ज़ भी बदलने की ज़रूरत नहीं करूँगी और अल्लाह ताला कमी बेशी से दरगुजर करें। लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आलू तो एक ही है ना, लेकिन जब आप उनको मुख्तलिफ तरीके से पकाते हैं तो टेस्ट फ़र्क हो जाता है। उबले हुए आलू का फ़र्क फ्राई आलू से, सब्ज़ी में डले हुए चावल में डले, हर चीज़ से फ़र्क होता है ना। तो हर साल कुरान पाक का एक नया रंग देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये समंदर है। तो इंशाल्लाह इस साल अल्लाह ताला की तौफीक से हम इस दौरे कुरान में जिस चीज़ को देखेंगे और जिसकी हमें फ़िक्र लग गई है, वो ईमान है। ईमान, ईमान और ईमान। ईमान क्या है, ईमान के क्या असरात हैं, ईमान ईमान। और इसको हमने जो नाम दिया है फेथ इन एक्शन का दिया है, और फेथ इन एक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम ईमान की वो मुख्तलिफ किस्में जाने जिसको एक हदीस में हमारे प्यारे नबी ने ईमान की शाखें कहा है। तो इस पूरे सफ़र में, यानी कोई आपसे पूछ सकता है कि ये दौरे कुरान मैं क्यों सुनूँ, मैं कुछ और क्यों ना सुन लूँ या मैं ना सुनूँ, तो क्या होगा? कुछ चीज़ें आज बताऊंगी और कुछ अभी छुपाऊंगी, साथ साथ चलेंगी इंशाल्लाह। तो हम इस पूरे सफ़र में 60+ ब्रांचेस ऑफ ईमान पढ़ेंगे, ईमान की शाखें, ब्रांचेस ऑफ ईमान। इस पे बात आगे होगी, मैं इस वक्त सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हर रोज हर पारे के साथ हम दो दो ऐसे अमल पढ़ेंगे कि जो बाद में इंशाल्लाह हमें ईमान का या इस्लाम का एक सरसब्जो शादाब दरख्त बना देंगे। फिर इसी तरह से पहला पारा जो आज हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है अलिफ लाम मीम। क्या मानी है इसका? मैंने इस कॉलम क्यों नहीं पढ़ा, आलाम क्यों नहीं पढ़ा, मैंने एक क्यों इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा? क्योंकि हमारे नबी ने हमें ऐसे ही सिखाया। तो आज ये बात बता दूं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी के कल्ब अथर पे उतरा, जिब्रील अमीन के ज़रिए से उतरा, और ये सारा तारुफ कुरान का हम सूरह शुरा में पढ़ेंगे। तीन आयतें मुस्तकिल हैं। आज भी हर स्कूल ऑफ थॉट यानी जो उलमाए सलफ सालेहीन से लेके आज तक कहते कुरान क्या है, तो वो कुरान वो है। मैं आपको किसी अरबी की आयत में आज नहीं डालूंगी, सिर्फ समझिए। तो इस कुरान का जो हिस्सा हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की गाइडलाइन में पढ़ेंगे। पूरे शरह सदर के साथ आप इसको किसी से भी शेयर कर दें, कोई एक फिकही बात नहीं होगी, मसलक की बात नहीं होगी, किसी स्कूल ऑफ थॉट का नाम नहीं होगा, किसी उस्ताद का नाम नहीं होगा, किसी मदरसे का नाम नहीं होगा, और ना आपको किसी से जोड़ना मकसूद होगा। कुरान क्या है? रब का पैगाम, उसके बंदों के नाम। चलिए, इस पूरे सफ़र के दौरान आपको एक और चीज़ मिलने लगी है, और वो है बार बार आपके प्यारे रब की पुकार, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तर्जमा मैं कर देती हूँ, या अय्युहा, ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू ईमान लाए हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ओ ईमान वालो, ओ मुझे मानने वालो, ओ मुझ पे मान रखने वालो, यानी अल्लाह की मोहब्बत ईमान वालों से। आपको पता है पूरे कुरान में आपके रब ने कितनी दफ़ा आपको पुकारा है? 89 टाइम्स, एक कम 90। कितने को कुरान पढ़ते हुए इसका एहसास भी कभी हुआ? हमारे प्यारे नबी के सहाबे कराम तो ऐसे थे कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता तो कहते कि लोगों गौर से सुनो, तुम्हारे रब ने तुम्हें बड़ी दूर से पुकारा है। इसके बाद या तो कोई हुक्म होगा या किसी चीज़ से रोका जाएगा। अल्लाह करे कि ये कुरान आपके मेरे दिल पर भी इसी तरह लिखा जाए कि हम इसके बारे में यही कह सकें, हमारा सुनना सुनाना गूंगे बहरों वाला ना हो। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो बोलते नहीं, जो सुनते नहीं, और हकीकत है कि कोई एक बच्चा हमारे घरों में या हमारे इर्द गिर्द ऐसा आ जाए जो बोले या सुने ना, तो हम उस पर और उसके माँ बाप पर रहम खाते हैं। लेकिन जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू की पुकार पे लब्बैक ना कहें, ना सुने, ना कान में आवाज़ पड़े, और पड़े भी तो ऐसे गुजर जाएं जैसे सुना ही नहीं, तो उन पे कोई अफसोस नहीं करता। हम इस पूरे दौरे कुरान के दौरान 89 टाइम या अय्युहल्लज़ीना आमनू को हर पारे के साथ देखेंगे। जैसा कि पारा एक में अल-बकरा 104 में आएगा, वो क्या आएगा ये जब वहाँ आएगा तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अगली चीज़, आज दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है? वो ईमान है। ईमान की ताकत क्या थी, कैसे थी? हर पारे के साथ साथ उस पारे में से निकाल के दिखाएंगे आपको कि ईमान के भरोसे पे लोगों ने क्या कुछ ना हासिल कर लिया। इंशाल्लाह यहाँ नहीं बताऊंगी, जहाँ आयतें आएंगी, जहाँ हुक्म आएंगे, साथ साथ अब जज्ब करते जाएंगे। बस इतना कह देती हूँ कि हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन रोल मॉडल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ बाकी अम्बिया कराम भी हैं। कसस-उल अम्बिया हमने कई बार पढ़े सुने। आखिर क्या वो ताकत थी कि इंसानों को सीसा पिलाई दीवार बना देता था? बस अगर आज अगर हम सबसे ऊपर से भी बात शुरू कर लें तो साहिब शरीयत अंबिया कराम में सबसे पहले नबी हज़रत नूह अलैहि सलाम थे। 950 यानी 950 ईयर्स उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खड़े होकर लोगों को बुलाया, और उसका रिस्पांस क्या मिला? आप रिस्पांस कहते हैं उसको, उसका जवाब कितनों ने दिया, कितनों ने उसको कबूल किया? हदीस की रोशनी में देख ले तो 70-80 के बिटवीन कुछ लोग। हिसाब के जोड़ तोड़ करने वालों ने करके दिखा दिया कि हर 12 साल बाद एक बंदा आए ना उनकी दावत पे, तो फिर 950 साल में जाकर 70-80 लोग बने। आप अपने आप पर लीजिए, मैं अपने आप पर लूँ। आज आपके लिए ये सारा इहतमाम किया होता और आप में से कोई एक भी ना होता, फिर क्या होता? कौन था जो मुझे बोलने पे मजबूर करता और जिन सब ने इंतज़ाम किया, इंतज़ामिया को दिल छोड़ने से रोकता ईमान। जब बंदे को अल्लाह की समझ आ जाती है ना, तो ये ईमान होता है। तो आज की ईमान की ताकत को ले लीजिए कि आप सब ने दौरे कुरान सुनने की नीयत की, और आपके साथ सैकड़ों लोगों ने सुनवाने की भी नीयत की हुई है, जो हमारे रिकॉर्ड में इससे ज़्यादा को अल्लाह जानता है। आपके पास एक भी ना आए, आप बैठे रहिए, कोई कुर्सी खाली नहीं होगी, फरिश्ते मौजूद होंगे इंशाल्लाह ताला। तो जो चीज़ बंदे को जमाती है ना, वो ईमान है। और ईमान के क्या रंग है, इसको हम देखेंगे ख़ास तौर में। फिर इसमें अगला एंगल लीजिए, नसरुम मिनल्लाही व फतहुन करीब, उम्मीद होप, मदद अल्लाह की तरफ से और फतह है करीब की। तो नसरुम मिनल्लाह हमेशा से है मदद अल्लाह की, आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगी, उससे भी आगे, उससे भी आगे। ये अल्लाह के असूल है। अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम की सारी बेएतनाइयों और उनके बहुत ही बुरे रिस्पॉन्स के बावजूद अगर जमाए रखा अपने काम पे, तो अल्लाह ने, तो अल्लाह की मदद थी नूह अलैहिस्सलाम के साथ। और अगर नमरूद की लगाई हुई आग में इब्राहिम जलने से बच गए, तो ये अल्लाह की मदद थी। और अगर बदर से लेके तबूक तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर मैदान में खड़ा रखा, तो ये नसरु मिन अल्लाह थी। व फतहुन करीब, तो फिर उससे भी आगे की चीज़ है। इंशाल्लाह हम इस सफ़र में इसके एंगल देखते रहेंगे। हम आज अपनी हिस्ट्री से ही बेखबर हैं। आपको बीच बीच में ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिसका ताल्लुक मुस्लिम हिस्ट्री से है, ताकि आज के दौर के मुख्तलिफ मैदान जहाँ मुसलमान खड़े हैं, तो हमें पता लग जाए कि अल्लाह की मदद को बुलाने की चीज़ क्या है। अगला एंगल इस दौरे कुरान का मेरे हाल फिफ्थ बन रहा है, आप गिनते जाएं, मैं तो बस बताने वालों में हूँ। और वो है, मुझे है हुक्मे अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कभी भी इस जगह पर आकर बैठकर किसी बंदे की नाराज़गी या उसकी खुशी की परवाह नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह के को गवाह बनाकर कहूँगी, अल्लाह से ही मदद मांग के कहूँगी कि मैं यहाँ बैठकर कोई चीज़ छुपाऊँ नहीं। वो कहते हैं ना कि चमन में मेरी तल्ख नवाई गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की। देखिए कुरान एक नसीहत है, एडवाइस है, हुक्म है कह लें, जिक्र है। और नसीहत अपने मिजाज के अतबार से अच्छी नहीं लगती। हमारी पूरी उर्दू शायरी में नासिख किसको कहते हैं, बड़ा ही कोई एक विलन टाइप का किरदार। बच्चों को माँ बाप की नसीहत अच्छी नहीं लगती, शागिर्दों को अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में उस्तादों की बात अच्छी नहीं लगती, और बीवियों को शोहरों की, और शोहरों को नसीहत नहीं अच्छी लगती। तो जब वो नसीहत हो अल्लाह की, मालिक कायनात की, तो कुछ लोगों को वो भी अच्छी नहीं लगती। आपने मैंने अजाने देनी है इस बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़िंदगी के हर फील्ड, हर मैदान में जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाहियाँ शुरू हो जाएंगी ना, बाकी बात खुद ही हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बीच में साथ साथ कुछ चीज़ें देते हुए, कुछ चीज़ें पारे के शुरू में, कुछ एंड पे, और बहुत सारी चीज़ें बीच में लेंगे। हमारा आज का गोल, पहला पारा रुकू नंबर 9 तक है। हमारे दरे कुरान में हमेशा फर्स्ट पारा 2 दिन में और 30वां पारा भी 2 दिन में होता है। शुरू करेंगे सूरत फातिहा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल फातिहा। तरतीब के अतबार से कुरान पाक की मुसहफ की पहली सूरत है, 7 आयात हैं, और नज़ूल में ये पहली मुकम्मल सूरत है, यानी जो पहली उतरी थी वो मुकम्मल सूरत, वो सूरत फातिहा थी। और फातिहा कहते हैं खोलने वाली, फतह से। आज आपकी मेरी ज़िंदगी का एक नया दरवाज़ा खुलने लगा, खैर के दरवाज़े खुलेंगे, बरकत के दरवाज़े खुलेंगे, रहमत के दरवाज़े खुलेंगे। और ज़रा से कान लगाकर सुनिएगा इसको कि इसमें आ क्या रही हैं बातें। कुछ लोग कुरान सुनने से डरते हैं, ना ना ना, सुन लिया तो अमल करना पड़ेगा, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो आइए ज़रा रब का तारुफ। और यहाँ मैं आज आपको एक छोटा सा काम दूंगी जो आपने इन क्लास करना है, कुरान के तर्जमे के दौरान जो बात आपको खुश कर दे उसको हाईलाइट कर ले, दैट्स इट, बस। क्योंकि इस साल हमने उम्मीद का थीम भी लिया है, आपने कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी। जहन्नुम की बातें सुन के इस्तग़फ़ार कर लीजिए, जन्नत की बातें, तरगीबात और मोहब्बत वाली बातें, आपने उनको टच करना है। ये आपका होमवर्क होगा इन क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। चलिए بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آپ کو اس عربی کی سمجھ آ رہی ہے جو میں نے پڑھی؟ آپ کے سامنے مصحف میں ہے. 98% لوگوں کو ترجمہ آتا ہوگا. چلیے سوچتے ہیں کیا واقعی آتا ہے. کیا کہا اس میں اللہ نے آپ سے؟ کتنے حکم ہیں اس میں؟ کتنی باتوں سے روکا گیا؟ اب تھوڑی سی فکر لگ گئی. آج میں اور آپ اپنا لیول چیک کریں گے. ڈاکٹر دوا نہیں دیتا جب تک پہلے اس کے 4-6 ٹیسٹ نہ کروا لے. طبیعت کیسی گرم ہے کہ وہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. اگر آپ کو صرف فاتحہ پڑھ کر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ آپ مجھے تو پھر یہاں سے نہ ہٹانا. کیا ہے سورۃ فاتحہ؟ بندہ مومن کی چھوٹی سی تصویر. ایمان والا کیسا ہوتا ہے؟ ایمان والے کو اپنے رب پر کیا مان ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہے ایمان, اس میں سے الف نکال دیں اور بیچ میں سے یا نکال دیں تو پیچھے مان رہ جاتا ہے. اللہ پر مان کا نام ایمان ہے. سورۃ فاتحہ آپ کو اس کی ویری اسمال پکچر دکھاتی ہے, اور پیچھے جو پورا قرآن ہے نا, یہ بندہ مومن کی ایک بڑی تصویر ہے. چلیے تھوڑا سا اور کوشش کرتی ہوں واضح کر دوں. سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونے لگتا ہے. وہ جو ماں اور بچے کا ہوتا ہے, اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے, ساری مثالیں تمہارے اپنے لیے ہیں. وہ محبت جو ماں سے محسوس ہوتی ہے, وہ قربت جو ماں سے بچہ چاہتا ہے, وہ کھلانے اور پلانے کا جو انتظام اللہ نے ماں اور بچے کے بیچ میں رکھا ہے. بندہ مومن کی چھوٹی تصویر کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کو پتہ لگ جائے کہ یہ اللہ میرا اللہ ہے, مجھے ہے حکم ازاں, لا الہ الا اللہ. 125,000 بار کلمہ پڑھ کے میت کی راہداری کے لیے رکھتے ہوئے کوئی ایک لمحے کے لیے تو سوچے کہ ساری زندگی اس کلمے کو کہاں رکھا. آج ہمارے کلچر میں ایک دعا کی جاتی ہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے. بولیے آمین. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی موت دے, حسن خاتمہ ہو ہمارا. لیکن زندگی میں کلمہ کے تقاضے پورے کریں گے انشاءاللہ اللہ نصیب کرے گا. سلف صالحین میں سے ایک استاد امام ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول ہے. کہا کرتے تھے, استاد شاگرد تھے ابن تیمیہ اور قیم, کہا کرتے تھے کہ ساری زندگی کلمہ بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے. موت کے وقت ملک الموت کو دیکھ کر خوف کی وجہ سے زبان پہ آ جاتا ہے. کبھی خدا نخواستہ کبھی چوری ہوئی ہو, ڈاکو آ گئے ہوں, چور کو دیکھتے ہی کیا کہتے ہیں, چابیاں ادھر رکھی ہیں, وہ ادھر, لے لو ہماری جان چھوڑ دو. تو آج میں آپ زندہ ہیں, بولیے الحمدللہ. آج آپ اور میں سورۃ الفاتحہ کے طور کوئی ایک حکم نہیں ہے, کوئی ڈوز میں نہیں, کوئی ڈونٹس میں نہیں, کوئی ڈانٹ نہیں, کوئی ڈپٹ نہیں. ابھی ترجمہ پڑھیں گے تو آپ فیل کریں گے اس کو. ہاں پھر پورا قرآن بندہ مومن کی بڑی تصویر کیا بتاتا ہے؟ کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے. آپ اس کو لکھ لیں اپنے نوٹس میں میرے کہنے کے مطابق. سورۃ فاتحہ ایک بچے کا بیبیزم ہے. کوئی ماں اپنے بچے سے کچھ کہتی ہے کرو؟ بتائیے. وہ تو اس کو نہلاتی دھلاتی کھلاتی پلاتی, کروٹ بھی وہی پلٹتی ہے. اللہ بھی نہیں چاہتا آپ سے. آپ میں جتنے پیارے پیارے لوگ ہیں نا, معصوم سے, جن کے کانوں پہ کبھی آواز ہی نہیں گئی اور گئی تو سوچا ہی نہیں گئی, صرف پہلے اللہ سے محبت لیجئے. اور دور قرآن کے دوران اگر صرف آپ اللہ سے محبت والے گول میں پورے اترے تو انشاءاللہ سارا قرآن پھر بندہ مومن کی بڑی تصویر. اور بڑی تصویر کیا ہے؟ جو آپ بڑے ہوتے ہوئے بچوں سے پھر مانگتے ہیں. پہلے سکھاتے ہیں نا, پھر ٹریننگ دیتے ہیں, پہلے تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالتے ہیں بچوں پہ, پھر بعد میں ڈالتے ہیں. بچیاں کہتی ہیں ہمیں کام کرنا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں خراب ہو جائے گا, یہ ہوگا, اچھا یہ کرو وہ کرو, یہ برتن توڑنا نہیں, یہ کر لو وہ کر لو. پہلے ہوتی تھیں بچیاں, اب تو مجھے نہیں پتا کیسے کچن کہلاتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ پورا کچن, کیا پورا گھر ماں بیٹی کے اوپر ڈالتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ آپ سے زیادتی نہیں کرے گا. ماں ہر رکھ ابھی ربی کل کریم. پھر انفطار میں اللہ نے پوچھا, اے بندے تجھے اللہ کے بارے میں کس نے بدگمان کیا؟ ماں ہر رکھا, ہر رکھتے دھوکے کو, غرور, دھوکا. تجھے اللہ کے بارے میں کس نے بدگمان کر دیا؟ کیا تو اس کو اتنا سمجھتا ہے کہ اتنا سخت ہے تیرا رب؟ اور میرے یہ جملے سن کر وہ سب جو قرآن سننے سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا, وہ خوشی سے آئیے. جس حال میں آنے آئیے, जिस हुलिये में आना आइए, जो दिल करता है मानिए, जो दिल नहीं करता मानिए, लेकिन सुनिए तो सही। तो आइए जरा आप दिल के कानों के साथ सूरह फातिहा का तर्जुमा सुनेंगे। टॉपिक क्या है? पूरे कुरान की ये हर रुकू वाइज आपको इस सेट में टॉपिक्स भी मिलेंगे। एक और वादा हो गया पूरा। एंड पे बताइएगा कि हमें दौरे कुरान 24 क्यों सुनना है, कितने पॉइंट्स जमा हो गए। तो एक ऐड ऑन क्या हुआ, पूरे कुरान की रुकू वाइज थीम मिल जाएगी आपको। थीमेटिक दौरे कुरान है ये। तो 7 आयते हैं, टॉपिक है तौहीद का एतराफ और मदद की दरख्वास्त। अपने लफ्ज़ों में तो हम ये कह सकते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन, बिल्कुल सूरत फातिहा के बीच का जुमला है। आइए ज़रा इसका तर्जुमा सुनते हैं। इस साल हमने कोशिश की है कि इंग्लिश का तर्जुमा बड़ा और उर्दू का छोटा लिखाया जाए। ये मैंने इस मोहब्बत में करवाया है कि अमेरिका कनाडा के अक्सर बच्चे या यहाँ के बॉर्न एंड रेस्ड लोग जो हैं वो उर्दू समझ तो लेते हैं, पढ़ नहीं सकते। तो इंग्लिश तर्जुमा आपके बच्चों के लिए और उर्दू आपके लिए। चलिए सुनते हैं। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। बदले के दिन यानी कयामत का मालिक है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद चाहते हैं। हमें सीधी और सच्ची राह दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, इनका नहीं जिन पर गजब किया गया, और न गुमराहों का। सूरत शुरू भी हुई और पूरी भी हो गई। मुबारक हो आपको, आपकी पहली सूरत पूरी हो गई। इस रास्ते में कदम कदम पे खुशियाँ मिलती हैं, ये पहली खुशी है, चाहें तो सेलिब्रेट कर लीजिए। क्या आपको इस पूरी सूरत में कोई हुक्म मिला? डूज, अमर, इंटेरोगेटिव? नहीं। कोई डोंट है? नहीं। पूरी सूरत को अगर देखें तो ये एक तराजू है। ये देखिए, पहली 3 आयतें एक पलड़े में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन, ये आपके रब का तारुफ है। यानी 7 में से 3 आयतें रब से मुतल्लिक, सारी तारीफें, सारा कुछ, और वो क्या है, यही तो कुरान में पढ़ने लगे हैं। और सिर्फ हमें अपने रब की पहचान हो जाए, जो इस साल होनी है, क्योंकि टॉपिक ही रब की ज़ात है। तो नमाजें सीधी, रोजे सीधे, फिर हमारी पर्सनैलिटी सहाबा कराम जैसी बनेंगी इंशाल्लाह, और इसकी कोशिश करते रहेंगे। एक तरफ अल्लाह की ज़ात की चीज़ें हैं, दूसरे पलड़े को देखिए, तलब क्या है उससे, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चाहिए। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उनका जिन पर तूने इनाम किए, वो कौन होते हैं, जिनके लिए नेकियां आसान हो जाए। नोम का लफ्ज है ना, नून ऐन मीम, उर्दू में हम इनाम कहते हैं ना, नेमत। और कैटल्स यानी मवेशी जो उनको अलनाम कहते हैं, सूरत अलनाम भी है, नरम चाल वाले। मैं आपको इसके 20 मानों में से एक मानी दे के मोहब्बत के साथ आगे ले जाऊंगी। इनाम वाले लोग वो होते हैं जिनके लिए नेकियां करना आसान हो जाए, जिनके लिए नमाजें पढ़ना आसान हो जाए, रोजे रखने आसान हो जाए, नफ्स पे पांव रखना आसान हो जाए, चुपके चुपके वो अल्लाह के रस्तों पे आ जाए। और अनमत अलैहिम की रियल पिक्चर जो मैंने शुरू में बता दी है, आप में से अगर किसी का मिस हुआ है जादुल खैर 24, ये आयत 4 दर्जे, सूरत निसा आयत 69 में अल्लाह ने ये इनाम वाले लोगों की डिस्क्रिप्शन दी है कि नबी, सिद्दीक, शहीद और साले। इसको सुन लीजिए, देखिए दो चीज़ें हिदायत देती हैं अल्लाह के हुक्म के बाद, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह, अल्लाह की किताब और अल्लाह के बंदे। दूसरी तरफ कह लें, अगर किताब किताब है तो रिजाल में उस्ताद भी है, मेंटोर, जो आपके लिए रोल मॉडल हो। और ये जो 4 गिरोह है ना, ये वही रिजाल है कि जिनको देखकर बंदा कहता है इट्स पॉसिबल। देखिए, इस्लाम अपनी खूबसूरतियों के साथ दुनिया में सूरज बन के चमक चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से लेकर 1000 यानी 10 सदियों तक पूरी दुनिया पे इस्लाम ऐसे चमकता था जैसे सूरज चमकता है। ये जो आपका मेरा आज से लेके ज़रा सा 400 साल पीछे ले जाएं, 15th सेंचुरी है ना, तो 445 साल थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, ये जो पीछे का दौर है ना, ये अंधेरों का है। और नसीब देखिए हमारी नस्लों के, हमारे बच्चों के, और ये आपसे पीछे जितनी जनरेशन्स गई, इन्होंने इस्लाम का डाकिरा देखा है। वो जैसे ग्राफ होता है ना, ऊपर जाता है फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, नबी सल्लम से लेके ऊपर ही ऊपर था, ऊपर ही ऊपर था, पीक थी। ये यूरोप के किनारे पे इस्लाम आ चुका था, स्पेन, हिस्पानिया और टर्की तो आज भी है। बस फिर जब हमने अल्लाह के वादों को छोड़ा और अल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, फिर हमारा डाउनफॉल। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा यूं है, लेकिन याद रखिए ये जो अब 15 सेंचुरी है ना, ये इधर ग्राफ शुरू हो गया ऊपर। ये उम्मीद की सदी है, ये कुरान की सदी है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को कुरान की भूख लग रही है, उम्मत मुस्लिमा कुरान को थाम रही है। जैसे बहुत सो ले ना, कितना घुसोएंगे आप, सोएं और सोएं, नहीं सो जाओ, नहीं और सो जाओ। आप देखा करें जरा वीकेंड पे बच्चे कैसे उठ के बैठे होते हैं, रोज रो रो के डांट डांट के उठवाते हैं आप, और वीकेंड पे उठ के बैठ जाते हैं आंखें पट पट कर। उसी माँ बाप कहते हैं सोना है हमें, थोड़ा सोने तो आज, वो कहते हैं नहीं अब हमें भूख लगी है, हमें खाना दो, हमें ये करो। तो हम बहुत सो लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उठ रहे हैं, नस्रु मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये जो आज आगे का दौर है ना, ये इस्लाम के वो गलबे का दौर आ रहा है, जिसको आप कह सकते हैं नस्रु मिनल्लाह व फतहुन करीब। शर्त एक है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजात का। वो जो दो तीन काम कहे ना अल्लामा इकबाल ने, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तो मुझे है हुक्म अज़ां। किरदार लाइए, करेक्टर बिल्डिंग कीजिए, अपनी नस्लों की, बच्चों की कर चुके तो बच्चों के बच्चे, पोते नवासे, जैसे सहाबियात ने अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए वुजू किया और बापों ने एक दिरहम भी मुशतबे शुबे वाली कमाई का नहीं खिलाया अपने बच्चों को, शक वाली चीज छुड़वा दी, चाहे भूखे बच्चे सो जाएं, तो माओं की गैरत थी और बापों का रिस्क हलाल था, और तरबियत थी और अल्लाह के नबी की मोहब्बत गूंद गूंद के डाल दी, तो उसी से तो मोहम्मद बिन कासिम और हसन और हुसैन और ऐसी खूबसूरत शख्सियात मिली जिनको अल्लाह इनाम वाला कहता है। तो आज हमारा काम सिर्फ अपने बच्चों को रोटी खिलाना नहीं है, उनको महंगी से महंगी गाड़ी और फ़ोन लेके देना नहीं है, वो भी करिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन पहले उनका अल्लाह के यहाँ मुकाम तो सेट कीजिए। साथ ही देखिए पलड़े के दूसरी तरफ में, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना कि वो जिन पर गजब किया गया। मग़दूब है या फिर वही असूल है, अल मग़दूब और अल मफ़ऊल दालीन। यानी अभी फिर मेरी आदत है रेफरेंस दे देती हूँ कि शायद किसी का दरवाज़ा खुल जाए। ये अभी तो हमें सिर्फ 13 मिनट हुए हैं सूरह फातिहा शुरू किए हुए, 18th डे में, टोटल 19 डेज दिखेंगे आपको अगर आप सूरह फातिहा की इन डेप्थ स्टडी हमारे चैनल पे देखेंगे ना, रोशनी का सफ़र। अभी अमेरिका आने से पहले नॉर्वे में करवाई, बस ये 7 आयतों को हमने 19 दिन में पढ़ा था, फिर सोच लें उसमें क्या होगा। तो मखदूब और दालीन, पीछे बात करके क्या किया, आप दोनों पलड़ों को सामने रखें तो क्या मिल रहा है, एक तरफ रब रब की सिफात, रब की कुदरत, और दूसरी तरफ बंदे की दुआ। बंदा किधर है, वो देखें ऊपर टंगा हुआ है, तराजू का ऊपर का मिडल हिस्सा देखिए, या का ना बुदू है या का नस्ताई। ये जो या का ना बुदू है ना, हम सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, ये बंदे की औकात है। अल्लाह मैं आपकी बंदी, गुलाम, नौकर, आमा, अल्लाह मैनी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमातिक नासियति बियदिक मादिन फियक हुक्मक। इस दुआ पे भी हमने 4 दिन का एक कोर्स पैरस से किया पिछले साल, इन्हीं दिनों में किया होगा ऑलमोस्ट, कुरान मेरे दिल की बहार। असल में हमारी डोरियां टूटी हुई हैं, टेंगल कॉर्ड्स हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का ये हाल है, जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तो बहरहाल इया का नाबुदू के बाद इया का नस्ताइन। मैं चूंकि सबसे छोटी हूं ना, तो मैं सबसे बड़ी हस्ती से भी मदद मांग लेती हूँ। क्या पता चला, सूरत फातिहा को देखिए तो क्या खुलासा निकला, अल्लाह ताला की तारीफ और इबादत के आदाब बताए जा रहे हैं। पहली आयत अल्लाह की हमदो सना की है, दूसरी और तीसरी में उसी को वाज़े किया गया, चौथी आयत अल्लाह और बंदे के ताल्लुक की है, और आयत 5 से फिर 7 तक अल्लाह ताला से हिदायत पाने और उसके गज़ब से बचने की दुआ है। ये है सूरत अल फातिहा। क्या पता चला, अल्लाह ताला आपको कैसा देखना चाहता है वो इसमें बता दिया। अब सवाल ये कि आप ये सूरह फातिहा कितनी दफा पढ़ते हैं दिन में? एटलीस्ट 17 टाइम, 17 टाइम, 17 बार फर्जों में। और हम सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें भी पढ़ते, नवाफिल पढ़ते, वितर पढ़ते, और सूरत फातिहा को कुरान का हिस्सा समझकर भी पढ़ते। ये दुआ है। एक सवाल लिखिए क्यों? सारी सूरत का अगर तर्जमा सामने रख लें, मांगा क्या है कि अल्लाह तू इतनी बड़ी हस्ती, तेरे हाथ में इतना कुछ, मांगने की चीजें तो बहुत सी हैं, पर मैं तुझसे सबसे कीमती चीज मांगती हूँ और वो हिदायत है। चलिए मैं आपसे कहती हूँ पानी दीजिएगा, आपने लाके मुझे दे दिया, खत्म। नहीं, थोड़ी देर बाद हो सकता है फिर मुझे प्यास लगे, मैं कहूंगी पानी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मेरा गला खुश्क हो गया। अब लिखिए, सवाल बना लें अपने दिल दिमाग की तख्तियों पे कि बार बार हिदायत ही क्यों मांगते हो। इससे पता चला कि हिदायत पेरिश्ड थिंग है, रहती नहीं है। एक दफा मांग ली तो अब सारी जिंदगी रहेगी? नहीं, हिदायत सारी जिंदगी तो छोड़ दें, एक पूरा दिन भी नहीं रहती, बार बार मांगनी पड़ेगी। जैसे ऑक्सीजन, एक दफा सांस ले लिया, बार बार मान लें ऑक्सीजन के बगैर एक बंदा कितने सेकंड ज्यादा से ज्यादा जिंदा रह सकता है? 18 से 25, 30, अपना अपना, किसी का स्टेमिना है। मेरा ले 40 सेकंड के बाद बंदा पार। जिस तरह बंदे को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, और जिस्म को पानी की जरूरत होती है, इस तरह हमें हिदायत की जरूरत होती है। और हिदायत फिसलने वाली चीज है, स्लिपरी, ये बार बार हमारे हाथों से फिसलती है। कोई खुशी का मौका आता है फिसल जाती है, गम का मौका आता है फिसल जाती है, हम अकेले होते हैं फिसल जाती है, हम अपनी बेतकल्लुफ दोस्तों के हाथ में होते हैं फिसल जाती है, मियाँ बीवी अकेले होते हैं फिर फिसल जाती है, छुट्टियों के मोड में जाते हैं तो फिसल जाती है, फन फ्रॉलिक कहीं जाए कुछ भी किया, यानी ये बार बार हाथों से निकलती है। अल्लाह कहते हैं इसको बार बार मांगो। जब दिन में 17 बार आप दुआ सोच के मांगेंगे तो आप इंशाल्लाह कायम रहेंगे। आपका नेविगेटर लगा हो, जीपीएस कह लीजिए, टॉम टॉम कहते हैं उसको यूरोप में, हर मुल्क अपना नाम है, अब मैं किस किस का लूँ? जरा सा आप रास्ते से इधर उधर हो तो वो बाजी क्या करती है, टेक यू टर्न प्लीज। ये यू टर्न पता क्या है? तौबा, आई बू न ताई बू न इला रब्बी ना हामिदून, पलट आओ, रब को नाराज किया था जो। जब तक आप सही ट्रैक पे आ नहीं जाते वो आवाज बंद नहीं होती। तो हिदायत की दुआ आपकी मेरी ऐसी ही दुआ है। तो ये एक छोटा सा खुलासा था सूरत फातिहा का।